नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है जिसका नाम है बी द चेन सीरीज। ब्रह्मा कुमारीज की सोशल मीडिया टीम की तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश रही है कि इस बदलाव के दौर में हम आपको रीच आउट कर सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, कोई इमोशनल सपोर्ट या स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, तो आप सीधे हमारे से संपर्क करके इन चीजों की गाइडेंस को ले सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने इस गाइडेंस को ऑफर करने के लिए पिछले 1.5 महीने से आपके साथ हर दिन जुड़ रहे हैं, और इसमें भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपने बेझिझक हमसे अपने दिल की बातें खोल के रखी हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जो अदरवाइज हम एक दूसरे से पूछने और शेयर करने में कतराते हैं, ऐसी भी बात आपने हमारे साथ की है। इस बात के लिए हम बेहद आपके शुक्रगुजार हैं। बी द चेन सीरीज में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। जो सपोर्ट जो हमारे से हो सकता है, जितना हमसे बन सकता है, वो हम आपको दें। हर दिन की तरह हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हमारे साथ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
ओम शांति। आप सबको भी मेरा मंगलकारी भावनाओं के साथ नमस्ते नमस्ते।
शुक्ला दीदी जी, पिछले कई दशकों से ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को अग्रसर करने में उनका योगदान रहा है। ब्रह्मा कुमारी के सिक्योरिटी विंग की ये चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ एक अकम्पलिश्ड योगी हैं। लाखों लोगों ने इनके मार्गदर्शन से अपने जीवन में परिवर्तन की राह चुनी है। हजारों लोगों ने अपने जीवन में आध्यात्म के मार्ग में अग्रसर होने के लिए सतत रूप से इनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि दीदी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में आपसे बातचीत करवाते हैं शुक्ला दीदी जी से। दीदी, पिछले कई दिनों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैसे लॉकडाउन और ये सब कुछ परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अचानक बदली। उनमें से कुछ चीजों को हमने बदलने की कोशिश की, जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की भी कोशिश की है, मगर हम में से कई लोगों को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ये ऐसे सिचुएशंस हैं जो हमने कभी पहले फेस नहीं किए। हर दिन हमारे दोस्त सवाल पूछते हैं। जो भी सवाल वो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे दोस्त जो ऑलरेडी लाइव प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो आपके सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिखिए। अगर आप कुछ शाउट आउट देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं तो अपने दिल के ख्याल ही शेयर करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग अपने दिल की बात रख सकते हैं। सवाल जो भी आएंगे उनमें से मैं सवालों को चुनकर शुक्ला दीदी से पूछूंगा और उसके लिए मैं गाइडेंस लूंगा। मेरा पहला सवाल आज संजना जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं और संजना जी सवाल पूछते हैं। दीदी, वो कहते हैं, ओम शांति, मैं खुल के अपनी लाइफ जी नहीं पा रही हूँ, स्पेशली फैमिली मेंबर्स के साथ अपने व्यूज नहीं पुट कर पा रही, बहुत साइलेंट हो गई हूँ ड्यू टू बिफोर 6 मंथ्स आई लॉस्ट माई डियर वंस। वो कहते हैं कि उनके परिवार में उनके प्रियजन को खोने के कारण उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, कि पिछले 3 महीने से बहुत ज्यादा साइलेंट हो गई हैं और वो अपने लाइफ को खुलकर नहीं जी पा रही हैं, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपने व्यूज को नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ऐसे में वो मदद की मांग करते हैं। तो दीदी, आप इन्हें गाइड करें।
संजना बहन, लाइफ को फैमिली लाइफ के अंदर ही जो सुख मिलता है वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकता, तो सबसे पहले आप इसी बात के ऊपर अपना विचार कीजिए कि मुझे फैमिली में ही सुखी रहना है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इस जीवन की यात्रा के अंदर फैमिली से जो सुख मिलता है वो ही सर्वे सर्वा है। तो हमें आपको क्यों ऐसा हो रहा है उसका कारण तो आप जानती होंगी, परंतु मैं समझती हूँ कि जितना फैमिली के अंदर घुल मिल करके रहेंगे, आपस में लेन देन करके रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप थोड़ा रिजर्व हो गई है, किनारा आपने एक अपने आप को एक किनारे में कर लिया है और आप सबसे दिल की बात अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं, तो उसका कारण मैं समझती हूँ आपस में थोड़ा सा विचारों की भिन्नता आई होगी, परंतु विचारों की भिन्नता तो संसार का एक नियम है, आपस संसार में जहाँ दो प्राणी रहेंगे वहाँ विचारों में भिन्नता आएगी, परंतु हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम जहाँ भी रहे, जिस स्थान पर रहे, जिन लोगों के बीच में रहे, उनके साथ मिलजुल करके रहे और उनको अपना समझे, क्योंकि जब तक उनको हम अपना समझते हैं तो अपनेपन में जो खुशी और आनंद आता है वो किसी दूसरे से नहीं आ सकता। तो आप अपनों से ही दूर हटती जा रही है, ये ठीक बात नहीं। मेरा तो आप सबके प्रति, आपके प्रति यही सुझाव है कि आप उनको अपना समझिए और अपने दिल की लेन देन कीजिए। जो आपके और उनके विचारों में थोड़ा सा विद्या आई है या थोड़ा सा मन मुटाव हुआ है या थोड़ा सा ऐसी कुछ बातें हुई है जो आप एक दूसरे से दूर महसूस कर रहे हैं, परंतु आप पहले अपने आप को अच्छी तरह से देखिए, क्या आप अपने आप को अच्छी तरह से महसूस कीजिए कि मेरे से ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण दूरियां आई है, और फिर उसके साथ साथ अपनी उस बात को देखते हुए आप अपने उन मित्र संबंधियों से जिनसे आपको दूरियां आई है उनके साथ भी अपने विचारों की लेन देन करेंगी और उनके साथ एक सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक व्यवहार करेंगी, तो आप बहुत सुख महसूस करेंगी और ये दूरियां अपने आप में खत्म हो जाएंगी। मैं ऐसा समझती हूँ।
जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य होने के नाते हम परिवार के साथ रहते हैं, दो लोग साथ में रहते ही हैं, तो वहां पर चीजों को समझ कर करना बहुत अनिवार्य होता है। और आपने जैसे कहा कि हो सकता है किसी कारणवश दूरियां हुई हो, बट परिवार साथ रहने के लिए है तो उनके साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं दीदी। अगला प्रश्न हमारे साथ आकांक्षा सिंह है। आकांक्षा यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो पूछते हैं, हाउ टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हाउ टू मैनिफेस्ट अवर डिजायर्स क्विकली। आकांक्षा जी का प्रश्न है कि हम हमेशा सकारात्मक कैसे सोचें और जो कुछ भी हम अपनी इच्छाएं हैं उन चीजों को क्विकली वो हमारे जीवन में परिपूर्ण हो, जो हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सके जल्दी से जल्दी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए पूछते हैं।
आकांक्षा जी, मैं समझती हूँ कि जैसा सकारात्मक जीवन ही सबसे सर्वोच्च जीवन है, क्योंकि जिस जीवन में सकारात्मकता नहीं है वो जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि नकारात्मक व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक जो चिंतन है वो हमें बहुत हमारे को गिरावट की ओर ले जाता है और दूरियां पैदा करता जाता है और जो कि नरक तुल्य बना देता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका जीवन इस तरह से हो। मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक चिंतन करिए, सदा सबके साथ सद्व्यवहार कीजिए और जितना आपका सकारात्मक चिंतन होगा उतना सकारात्मक चिंतन ही अमृत तुल्य है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है और वो एक दूसरे को तोड़ने का काम करता है। तो हमारा अपना पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हमें एक दूसरे से जोड़ के चलना है, एक दूसरे से मिलन मिला करके चलना, संस्कारों का मिलन मिला करके चलना है और एक दूसरे के विचारों को महत्व देकर के चलना है, एक दूसरे के विचारों को प्रशंसा करके उनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देखकर उन विशेषताओं से ही उनको आगे बढ़ाना है और आपस में मिलजुल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जितना आप नकारात्मक संकल्प चलाते रहेंगे उतना आपके अंदर दूरियां बढ़ती जाएंगी और वो दूरियां एक दिन ऐसी लंबी दीवार बन जाएगी जो आप एक दूसरे को दिखना भी नहीं चाहेंगे। तो जीवन में आपने अपने आप को सदा ही सुखों से दूर कर दिया, दुखी जीवन बना लिया, तो वो दुखी जीवन कोई यथार्थ जीवन नहीं है। सुखी जीवन ही वास्तव में यथार्थ जीवन है और सुख ही मनुष्य जीवन की सच्ची निधि है। तो अगर आप अपने अंदर जितना सकारात्मक चिंतन चलाएंगे, जितना आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को, संस्कारों को महत्व देंगे और उनकी कुछ विशेषताओं की आप प्रशंसा करेंगे, उनको अपने साथ लेकर के चलेंगे और ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको निकाल देंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने जहां भी रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहां आप भी सुखी रहेंगे और आपके नजदीक का जो वातावरण है, जो आपके संबंधी हैं, वो भी आपसे बहुत सुख का अनुभव करेंगे। ऐसी मेरा शुभ विचार है आपके प्रति।
जी दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इसी से मिलता जुलता। जैसे आप उम्र में अभी 84 वर्ष के हैं, 84 इयर्स के हैं, इस उम्र में भी आप तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। जैसे आप ब्रह्मा कुमारी इसके नॉर्थ इंडिया कैंपस जो है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका हैं, आप चेयरपर्सन हैं सिक्योरिटी विंग के, हरिनगर ब्रह्मा कुमारी का जो सब जोन है वहां के आप निदेशिका हैं, इतना ज्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, देश विदेशों में आपने कार्यक्रम किए हैं, ऐसे समय पर जैसे ये बदलाव का दौर आया है तो आपके लिए भी तो ये नया अनुभव रहा होगा कि पहले जैसे पब्लिक प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, बट ये सब चीजें हो रही थी तो आप नेचुरली, आप तो इतने समय से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल हो गया होगा, बट आप ऐसे क्या पॉजिटिव विचार अपने आप को देते हैं जो आपको हमेशा खुश, आपको हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखता है?
मैं हमेशा अपने सामने एक बात रखती हूँ कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। चाहे आज बहुत इस तरह कोरोना की वजह से बहुत इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जो व्यक्ति व्यक्ति से बहुत दूर चला गया है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो हम शारीरिक रीति से दूर है, परंतु आत्मिक रीति से हम एक दूसरे से दूर नहीं है। अगर हम जैसे वैसे भी हम अभी प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि साइंस ने पहले से इस तरह के आविष्कार कर दिए हुए हैं जो हम दूर होते भी एक दूसरे से रोजाना मिल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रोजाना पहले हमारे यहाँ पर सत्संग हुआ करता था, हम लोग भी उस सत्संग के अंदर हजारों भाई बहनों से मिला करते थे और हजारों भाई बहनों से अपना विचारों की लेन देन करते थे, परंतु लॉकडाउन होने के कारण हम इस तरह से ना मिल करके हम ऑनलाइन पर भी मिलते हैं, जैसे अभी भी मैं आप सबसे मिल रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत कोई ऐसा हो गया है जिससे हमारे को कोई बहुत अजीब सा लगे। हमें तो और ही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज हम चाहते हैं अपनी सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करना। हम पहले यात्राएं भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाते थे, भिन्न-भिन्न प्रोग्राम करते थे, भिन्न-भिन्न लोगों से मिलते थे, तो हमारे को अपनी आत्म उन्नति का इतना टाइम नहीं मिलता था, परंतु आज हम देखते हैं हमारे को अपने लिए व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी बहुत टाइम मिलता है। हम सवेरे शाम इस पर बहुत अटेंशन देते हैं, रात्रि को भी आपस में बैठते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं और ऐसे ही शाम को नुआ शाम के टाइम भी योग करते हैं, अमृत वेले भी बहुत अच्छी तरह से योग करते हैं और फिर अपने उस परम शक्ति परमात्मा का धन्यवाद भी करते हैं कि आज जो भी साइंस ने साधन बनाए उन साधनों के द्वारा हम एक दूसरे से फिर भी दूर होते हुए भी मिलन मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए हमारे को कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ठीक नहीं हो रहा, हम हमेशा ही खुश रहते हैं और खुशियां अपने जीवन से दूसरों को देते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द का वातावरण भी, जो हम सेंटर में भी आश्रम के अंदर भी जो हम भाई बहन रहते हैं उनसे भी हम आपस में मिलते जुलते विचारों के लेन देन करते और एक दूसरे की उन्नति की राह दिखाते रहते हैं, जिससे कि जीवन सुखमय ही व्यतीत हो रहा है, ऐसा हमारी भावना है।
दीदी, एक और प्रश्न आया है हमारे साथ, हमारे दोस्त पूछते हैं, उनका नाम है सुश्री दास। सुश्री पूछते हैं कि अगर संबंध किसी के टूट गए हैं तो हाउ टू हील ब्रोकन रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप हमारे संबंध किसी कारण से टूट गए हैं, और ऐसा हुआ है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोगों के संबंधों में तनाव आया है, कुछ लोगों के संबंध टूटे हैं, तो ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप्स को कैसे हील किया जा सकता है, पूछते हैं।
मैं ऐसे समझती हूँ संबंध वापस वास्तव में बाहरी रीति से आपको लगता है कि टूट गए हैं, परंतु अंदर से वो संबंध टूटे हुए नहीं होते हैं। एक दूसरे की बातों को अंदर अंदर दोनों पार्टी चिंतन करती रहती है और अपना जो समय है वो सदुपयोग करने की बजाय उसका दुरुपयोग करती है, व्यर्थ चिंतन करके उनकी बुराइयों का, उनकी कमजोरियों का, उनकी हस्तक्षेप करने का या उनका हर बात में इंटरफेरेंस करने का, वो सारा चिंतन उनका चलता रहता है। अब जो संबंध इस तरह से हो गए हैं तो उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छा इलाज उसका यही है कि पहले मैं उसके प्रति शुभ चिंतन करूं, क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मूर्छित व्यक्ति को भी संजीवित कर देती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पहले मैं जिस व्यक्ति से मेरा मन मुटाव हो गया है, दूरियां बढ़ गई है, मैं उनके कुछ जो अच्छे संस्कार है उनको सामने ला करके उनके प्रति शुभ वाइब्रेशन, शुभ संकल्पों का प्रवाह दे और उस परम शक्ति परमात्मा के आगे भी ये रिक्वेस्ट करूं कि मेरे पिता आप इनको भी सद्बुद्धि दो, हमारा परिवार फिर हरा भरा हो जाए, हमारा परिवार फिर जुड़ जाए, हम फिर एक मत एक रस और संबंधों में समरसता और मधुरता ला करके एक साथ जीवन जिए। पहले आप उसका शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे आपके शुभ चिंतन से उनके पास भी आपके शुभ चिंतन का प्रभाव पहुंचेगा, क्योंकि संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जहां शुभ संकल्पों का प्रभाव पहुंचता है, दूसरी तरफ से भी वो सब शुभ संकल्प का प्रवाह एक दूसरे के पास, कैसे कहते हैं ना, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही दूसरा तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर देगा। तो जब मैं उनके लिए शुभ संकल्प करूंगी तो दूसरे के पास वो शुभ संकल्प पहुंचेंगे ही, और वो एक दिन इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये मुफ्त में हम ऐसी छोटी छोटी उलझनों में उलझ कर, छोटी छोटी बातों में पड़ कर एक दूसरे से दूर क्यों रहे, हम एक है, एक होकर के ही रहेंगे।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, संबंधों को सुधारने के बारे में। भले आप एक ही घर में हैं, हो जाता है कभी कभार ऐसे, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं रामकृष्ण साहब, और ये पूछते हैं कि हाउ टू ओवरकम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये पूछते हैं कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इससे ही मिलता जुलता एक और सवाल है, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह वो भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, और डॉक्टर आलोक कहते हैं किसी काम को जल्दी करने की प्रवृत्ति और एंग्जाइटी है, और ये खुद डॉक्टर हैं और ये पूछ रहे हैं कि किसी काम को जल्दी जल्दी करने की आदत बन जाती है और हमेशा जल्दीबाजी करने लगते हैं और उसकी वजह से एंग्जाइटी हो जाती है। तो डॉक्टर आलोक का भी प्रश्न वही है कि एंग्जाइटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, जल्दीबाजी की चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है।
आलोक भाई आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। वास्तव में देखा जाए जल्दी में कोई भी काम किया जाता है तो उसमें नुकसान ही होता है। तो कोई भी काम जब भी हम करते हैं उसका राइट लेफ्ट दोनों तरफ सोच करके करेंगे और समय को सामने रख करके करेंगे, और जिसके प्रति वो काम करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के संस्कारों को भी सामने रखेंगे, उसकी मानसिक स्थिति को सामने रख करके और करेंगे, तो उसमें ये जो जल्दबाजी से जो किया हुआ काम जिसमें नुकसान ही होता है और टाइम भी वेस्ट होता है और दूरियां भी बढ़ती है, तो क्या अच्छा हो कि हम राइट लेफ्ट सोच करके और परमात्मा पिता को बीच में रख करके, क्योंकि परमात्मा पिता को याद करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें एकाग्रता आती है, और एकाग्रता से किया हुआ काम, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है
जी। हमारे एक और दोस्त जो सवाल पूछ रहे थे दीदी, वो डिप्रेशन से रिलेटेड ये चीज पूछते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि बदलता हुआ वक्त ऐसे हो रहा है। रामकृष्ण जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे वक्त बदला है, हम में से बहुत सारे लोग अचानक से ऐसा महसूस करने लगे हैं कि क्योंकि हम घर के बाहर नहीं जा सकते, घर में रह के ही सब कुछ करना पड़ता है, अगर जाते भी हैं तो बाहर एक डर का माहौल बना हुआ है कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा तो एक टेंशन सा बना रहता है। तो ये रामकृष्ण जी का प्रश्न है, और साथ में निशा जी का प्रश्न है कि ये जो टेंशन हमें हो रहा है लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के पीरियड में, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं।
निशा जी, वास्तव में देखा जाए टेंशन तो कोई भी प्रकार का टेंशन जो है गलत है। टेंशन माना तनाव, तनाव के दो ही दरवाजे हैं, मैं और मेरा, ना? तो जब हम ज्यादातर मैं अर्थात ईगो में रहते हैं और मेरेपन, माना मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरे को ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसे वहां जाना चाहिए, ये सारी बातों से मैं अगर आप ज्यादा उलझे रहेंगे तो तनाव आएगा ही आएगा और आप निराशा की ओर बढ़ेंगे ही। परंतु जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसमें हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करके चलना चाहिए कि जो आया हमें उसको अच्छी तरह से और अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से उसका स्वागत करना है और घर में रह करके हमें अपने आप को खुशहाल करना है। हम कुछ अपने आप को खुश करने के लिए अनेक तरीके हैं। अगर आपको और कोई तरीका नहीं आता तो भक्ति काल में भी कहा जाता है कि अगर सवेरे के टाइम तुम उठ करके भगवान को याद करो या भगवान के नाम का जाप जपो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति आएगी। तो मैं भी आप सबको, निशा जी को भी और आपको भी ये सुझाव दूंगी कि आप सवेरे सवेरे उठकर पहले तो आप उस परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग करिए, नमस्कार कीजिए और फिर उस परमात्मा पिता जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, जो सबको शक्ति देने वाला है, उन पिता की याद में बैठिए, 5-10 मिनट अपने आप को मेडिटेट कीजिए उनके साथ और फिर थोड़ा सा वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने मन को अच्छी अच्छी बातों में व्यस्त रखेंगे तो ये जो डिप्रेशन है वो आपसे 20 कोस दूर चला जाएगा, मैं ऐसा समझती हूँ। परंतु आप अगर सवेरे सवेरे आलस में पड़े रहेंगे, निंद्रा में पड़े रहेंगे या इधर उधर की बातों में पड़े रहेंगे तो उससे, या डरते रहेंगे बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर मैं ये समझती हूँ कि ये सारा कुछ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम हमारी सोच अच्छी है, सशक्त है और पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि संसार की कोई भी प्रदूषण हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता। अगर हमारी सोच में सत्य है, स्वच्छता है, शुद्धता है और उस परमात्मा पिता की याद है और हमारा भोजन भी अच्छा है, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति शिष्टाचार का है और फिर हम अपनी आत्मोन्नति के लिए कुछ न कुछ दिन में 2 बार 3 बार 5 बार एक्सरसाइज भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बाहर जाने से आपको ऐसा महसूस होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना डरने की जरूरत नहीं है। डर और भय तभी आता है जब हम अपने आप को अकेला भी समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है। परंतु ये याद रखिए हम उस सर्वशक्तिवान पिता के संतान हैं और पिता की उस पिता के संतान होने के नाते से हम अपने आप में भी अपनी मनन चिंतन करते हुए अपने आप को सशक्त बनाइए। हम आत्मा भी अपने आप में शांत स्वरूप भी है, शक्ति स्वरूप भी है, पवित्र स्वरूप भी है, सुख स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। परंतु वो तब होगा जब हम अपने आप को अपनी शुद्ध समृतियों में विचरण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके अनुकूल अपने आप को चलाएंगे तो फिर देखिए आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा और आपको बाहर जाने में भी कोई डर नहीं लगेगा। परंतु क्या होता है जब हम थोड़ा ही छू छू करने लगते हैं अपने कमजोर संस्कारों के कारण तो ना चाहते हुए भी उसका वार हो जाता है। ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन के अंदर देखा।
जी मैं समझता हूँ दीदी, ये जो बात आप अभी कह रहे हैं कि जो चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों के अंदर कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाए रखते, आप शांत हैं, आप शक्तिशाली हैं, अपने आप को ये चीजें याद नहीं दिलाते हैं तो फिर आप अंदर से कमजोर पड़ने लगते हैं। यही पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन यही चीज सिखाता है, आपने कहा। और बहुत लोगों के जीवन में आपने जो देखा है, आपने कहा कि अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं मेरे से नहीं होगा, मैं डर जाऊंगा, अगर आप यही करते रहेंगे तो शायद वो चीजें आप नहीं भी कर पाएंगे। हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं जो आपकी बातों से सहमत हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे साथ सुमिता जैन पूछती हैं। सुमिता फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो पूछते हैं, दीदी हमेशा पास्ट में रहती हूँ, पास्ट को कैसे भुलाया जाए, प्लीज टेल मी, ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ सुमिता के ही नहीं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों का प्रश्न होता है दीदी अभी, क्योंकि घर पे रह रहे हैं बहुत सारे लोग, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, पार्क इत्यादि में भी लोग ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जैसे बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको तो बाहर जाने की मनाही है। तो जो 60 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं, उनका जो टाइम होता था पार्क्स में, कहीं मंदिर में इत्यादि में जाना होता था, वो सब बंद हो गया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे दोस्त जो घर में रह रहे हैं, वो अपनी ही बीती हुई बातों को याद कर रहे हैं, और अक्सर करके बीती बातें जो दर्द भरी हैं, जो जीवन में कष्टदायक अनुभव रहे हैं, वो बातें याद आती हैं, तो लोग उसी में जीने लग जाते हैं, तो बहुत दुख होने लगता है। तो पास्ट से कैसे बाहर निकलें, ये प्रश्न है।
पास्ट की बातें, सुनीता जी मैं ऐसा समझती हूँ कि पास्ट की बातें हमें तब याद आती है जब हम खाली होते हैं, जब हम अपने आप को बिजी रखेंगे कुछ पढ़ने में, कुछ अच्छा सा चिंतन करने में, कुछ अच्छा सा आर्टिकल लिखने में, कुछ अच्छी सी कविता बनाने में, कुछ अच्छे काम करने में, जब आप अपने आप को व्यस्त रखोगी तो ये पास्ट की बातें आपको याद नहीं आएंगी, परंतु आप अपने आप को एक अच्छा गृहस्थी बनाने में, अच्छा नागरिक बनाने में, अच्छा श्रेष्ठ जन बनाने में, अच्छी सशक्त आत्मा बनाने में बिजी नहीं रखती है, जिसके कारण आप खाली रहती हैं, और खाली रहने के कारण आपके पास तरह तरह की बीती हुई बातें, जो दुख भरी बातें हैं, वो आपको दुखी करती रहती हैं, जिससे आपके अंदर और निराशा, और विरोध, और वैर की भावनाएं जागृत होती हैं। जैसे आप देखेंगे जब कोई मकान खाली होता है तो कबूतर आकर के घोंसला बनाते हैं, जीव जंतु भी अपना घर आकर के बना लेते हैं, परंतु जो घर जिसमें इंसान रहते हैं, जो घर साफ सुथरा होता है, वहाँ कोई आकर के घोंसला नहीं बनाएगा, कोई जीव जंतु अपना घर नहीं बनाएगा, और वो घर जहाँ सत्यता है, स्वच्छता है, और जहाँ लोगों का रिवास है, वहाँ पर सब लोगों का सब बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यही शुभ राय है कि आप अपने आप को खाली नहीं रखिए, आप कोई स्थूल काम, कोई सूक्ष्म काम, कोई लिखने के काम में, कोई अपने जीवन के अंदर कुछ और अच्छा लीडर बनने, मैं एक अच्छा लीडर कैसे बनूं, उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखने में अपने आप को बिजी करेंगी, तो यह उस परमात्मा पिता की याद में रहने का अभ्यास करेंगी, मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन करेंगी, दिन में आप 4 बार 5 बार 10 बार, बीच बीच में 3 मिनट 4 मिनट के लिए एक्सरसाइज करिए इसी बात के कि मैं एक शुद्ध और पवित्र श्रेष्ठ और सशक्त आत्मा हूँ ना, तो उसमें आप जब बिजी रहेंगी तो उससे क्या होगा, आपको जो पिछली बातें याद आती है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शुद्ध संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है और हमारी इनर शक्ति को मल्टीप्लाई करती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी इनर शक्ति को उज्जवल बनाइए, सशक्त बनाइए, जागृत कीजिए अपने श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्पों के द्वारा, या एक अच्छा लक्ष्य रख करके। आपने अपना घर में रह करके, इन जैसे बुजुर्गों ने भी घर में रह करके अगर खाली रहेंगे तो जरूर इधर उधर की बातें रहेंगी, बीती हुई बातें याद आएंगी, दोष एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपित करते रहेंगे, उससे बेटर यही है कि स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक चिंतन भी करिए, और एक अच्छा लक्ष्य के कि मुझे एक ऐसा अपने आप को बनाना है जो मनुष्य से मैं कैसे देव प्राणी बन जाऊं, देवताई संस्कार, स्वतः प्रधान संस्कार मेरे अंदर इमर्ज हो, क्योंकि मनुष्य की असली संपदा तो सुख है, शांति है, पवित्रता है, दिव्यता है।
जी दीदी, आपने ये जो बात कही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ठीक है जीवन में बहुत सारी कठिन चीजें गुजर जाती हैं, मगर उस चीज को याद करने से कोई फायदा नहीं होता। हम पॉजिटिवली अपने आप को चीजों को क्रिएटिव करने में अपने आप को बिजी रखेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ पोएट्री हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें आप क्रिएटिवली अपने आप को एंगेज रखेंगे तो बहुत आसान हो सकता है। और मेडिटेशन ये पॉजिटिविटी की चीजों के लिए, अपने अंदर अच्छी चीजों को क्रिएट करने के लिए भी प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे दोस्त पूछते हैं, इनका नाम है नितिन, और नितिन पूछते हैं, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, दीदी अभी आपने कहा कि दूसरों के बारे में भी शुभ चिंतन करें, पर अगर उस पर्सन ने इंटेंशनली आपको ट्रेमेंडस हरासमेंट किया हो तो उस पर्सन के लिए बाय डिफॉल्ट नेगेटिव थिंकिंग ही आएगी और पॉजिटिव थिंकिंग करना उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगा। व्हाट विल हैपन ड्यू टू सच नेगेटिव एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएटेड फॉर दैट पर्सन। नितिन जी का बड़ा ही मजेदार सवाल है। वो कहते हैं अगर किसी ने ऑलरेडी हमें बहुत परेशान किया है और जानबूझ के परेशान किया है इंटेंशनली और हमें हर्ट किया है, तो उस व्यक्ति के प्रति हम चाहकर भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, कोशिश भी करते हैं तो नेगेटिव विचार और नेगेटिव वाइब्रेशन ही आते हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा जब अगर हम ऐसा नेगेटिव चिंतन उनके लिए ना चाहते हुए भी करने लग जाते हैं। नितिन का प्रश्न।
नितिन भाई, मैं आपको अपने अनुभव के आधार से एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि उस व्यक्ति ने आपको बहुत कुछ ऐसी तकलीफें दी है, आपको इतना आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपकी इज्जत के ऊपर भी बहुत अक्षेप विक्षेप लगाए हैं, और परंतु फिर भी मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया कि ऐसा संसार में सिर्फ नितिन आपके साथ ही नहीं होता, जो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है उसके आगे ये सब बातें आया करती है। परंतु जो महान बनने वाला एक व्यक्ति होता है, जैसे मैंने अपने आप में अनुभव किया कि मैं उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने मेरे को बहुत हर्ट किया होगा, मैं उसके प्रति भी फिर भी यही शुभाव और शुभावना रखती हूँ और यही कहती हूँ कि तुम ऐसी गलती फिर नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। मेरा तो कुछ नुकसान हुआ सो हुआ, परंतु तुम एक श्रेष्ठ जन नहीं बन सकते हो। अगर तुम्हें श्रेष्ठ जन बनना है तो तेरा भला इसी में है। कहते भी है कर भला हो भला अंत भले का भला। तो मुझे तुम्हारे प्रति कोई भी बुरा नहीं सोचना है, तुम्हारे प्रति कोई भी निकृष्ट विचार नहीं रखने हैं, तुम्हारा भी भला हो, क्योंकि संसार में हम एक दो को हाथ में हाथ लेकर चलेंगे तो सुखी रहेंगे। तो जो अपकार करने वाला है हमारे अंदर, उसके प्रति भी उपकार की ही भावना सदा जागृत रहनी चाहिए। तो जब हम उसके प्रति सदा उपकार करते जाएंगे तो एक दिन वो अपनी गंदी आदत छोड़ देगा। मुझे एक बात याद आती है कि एक आर्या समाज के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जो सनातन धर्म के जो व्यक्ति जो कर्म कांड को मानते थे उनको बहुत गालियां दिया करते थे। तो एक बार सनातन धर्म का जो व्यक्ति था, साधु था, उसके मन के अंदर ये विचार आया कि जैसे ठीक है मूर्ति पूजा को ये नहीं मानते, हम मूर्ति पूजा को मानते हैं, परंतु ये क्या है कि ये हमारे को हमेशा ही गालियां देता है, तो इनकी आदत को मुझे छुड़ाना है। तो एक दिन उसने क्या किया, बहुत अच्छे एक टोकरी ली और उस टोकरी के अंदर सुंदर सुंदर फल फ्रूट डाले और उसको ऊपर एक कपड़े से ढक करके उस व्यक्ति के पास भेजा। परंतु वो जो आर्य समाज का विशेष व्यक्ति था वो उस फलों की टोकरी को देखकर और भी क्रोधित हो गया और उसने वो टोकरी वापस किया। परंतु वो जो सनातनी संत थे उनके मन में ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे इनके अंदर वो वैर विरोध की भावनाओं को खत्म करना है। ये भी ईश्वर को याद करते हैं, हम भी ईश्वर को याद करते हैं, ठीक है ईश्वर को याद करने का इसका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, परंतु मेरे को इनकी दूषित भावना को बदलना है। तो उन्होंने फिर उसके अंदर और स्नेह भरकर और प्रेम भर करके और सुंदर सुंदर फल डाल करके फिर उस टोकरी को उनके पास भेजा। उन्होंने दूसरी बार भी उसको वापस कर दिया। ऐसे छह बार उस टोकरी को वापस किया गया। सातवीं बार उन्होंने और उसके प्रति बहुत शुद्ध भावनाएं, सद्भाव, शुभ कामनाएं भर करके भेजी, तो फिर उस आर्य समाज वाले महान व्यक्ति ने उसको रियलाइज हुआ कि देखो ये व्यक्ति कैसा है जिसने मेरी मनोवृत्ति को ही बदल दिया। तो नितिन भाई, हम सबको ये लक्ष्य रखना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी बड़ा ये शत्रु है, दुश्मन है, परंतु मुझे इसकी मनोवृत्ति को बदलना है। परंतु वो तभी बदल सकेगा जब मैं उसके प्रति बदल जाऊंगा, जब मेरे अंदर उसके प्रति शुभ कामना होगी, सशक्त विचार उत्पन्न होंगे, तब वो आत्मा बदल सकती है, वरना नहीं बदल सकती। तो हम कल्याणकारी के बच्चे होने के नाते से हमारा काम है एक दूसरे का कैसे कल्याण हो, एक दूसरे के अंदर कैसे सद्भाव और सद्भावनाएं पैदा हो, जो जोड़ने का काम कर रहे। तो नितिन भाई, अगर आप इस जो मैंने अपने विचार दिए, इस विचारों को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन भी श्रेष्ठ महान बन जाएगा, और उनके जो आपके जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किए हुए हैं, वो भी अपनी आदतों को चेंज हो करके आपसे हैंडशेक करके करेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, जो कहानी आपने बताई। मैं समझता हूँ एक्चुअल लाइफ में ऐसी चीजें होती है, हम सामने वाले से बदलाव की अपेक्षा करते हैं और इसके लिए हम पॉजिटिव सोचना भी शुरू करते हैं, बट एक दो बार में हार मान जाने से नहीं होता। जब वो व्यक्ति अपना व्यवहार नहीं छोड़ता तो हमें भी पॉजिटिविटी का अपना व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छाई का व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। और महात्मा गांधी की ये बात है कि ऑल चेंज बिगिंस फ्रॉम यू। अगर आप संसार में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो वो आपसे शुरुआत होती है, और अगर आप अच्छी चीजें करने लगते हैं, जैसे आपने उदाहरण में बताया कि आखिरकार लोगों को बदलना ही पड़ जाता है क्योंकि वो आपकी अच्छाई से इम्प्रेस हो जाते हैं, उस चीज को रिकग्नाइज कर लेते हैं। बहुत ही फायदे वाली बात आपने कही, और मैं सोचता हूँ हमारे दोस्त नितिन को ये बात अच्छी लगी होगी और वो इसको यूज भी करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न, हमारे साथ YouTube पे किरण जुड़े हैं, वो कहते हैं कि मेनी टाइम्स वन स्टार्ट्स फीलिंग दैट वन हैज कॉन्कर्ड एंगर बट देन सडनली वी लूज इट। किरण जी का प्रश्न है कि बहुत बार हमें लगता है कि हाँ हमने क्रोध को जीत लिया है, हमें लगता है कि हमें गुस्सा नहीं आता, अब हम कंट्रोल में रखते हैं एंगर को, फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमारे सीमा का बांध टूट जाता है और जब हम गुस्सा कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, क्रोध पर तो हमारा कोई कंट्रोल आया ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो क्या है सही तरीका, क्या है इसे करने का, किरण का प्रश्न है।
किरण बहन, आपका प्रश्न भी अच्छा है और आपने अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया, क्योंकि जब आपने ये संकल्प कर लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, और क्रोध करना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य खुद को भी दुखी करता है, अन्य आत्माओं को भी दुखी करता है, है ना। तो आप जब आप देखती हैं एक दूसरे के साथ जब क्रोध अग्नि का रूप धारण कर लेता है, तो फिर क्या होता है, एक दूसरे के से दूरियां बढ़ जाती है। तो जब दूरियां होने लगती है तो और भी दुखी होने लगता है मनुष्य, भी ऐसा क्यों हुआ। तो क्या ही अच्छा हो, क्योंकि कहते हैं एक बार का चोर कख का चोर सो लख का चोर। एक बार भी गुस्सा किया तो बार बार वो गुस्सा करने की आदत छूटेगी नहीं। तो अगर आप अपने साथ एक संकल्प कर लेंगे कि मुझे सहनशील बनना ही है, मुझे मधुरभाषी बनना ही है, मुझे एक जबान का धनी बनना ही है, स्वभाव का धनी बनना ही है, मुझे किसी के साथ ऊंची आवाज से भी नहीं भूलना, क्योंकि शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरे गले का हार है, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूँ ही सहनशील आत्मा, शील मेरा सुहाग है ना, शील मेरा सम्मान है। तो क्यों नहीं मैं अपने सम्मान को, अपने सुहाग को, अपने मुख की शोभा को अपने पास कायम रखो, अपने धन को अपने कायम रखो, अपने धन को, अपनी इज्जत को दूसरों के हाथ में क्यों रखो। क्योंकि एक बार आपने अपने क्रोध में आकर के अपनी इज्जत दूसरों के हाथ में दे दी और दूसरों ने भी आपकी इज्जत उतारनी शुरू कर दी, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप और इसके प्रति दृढ़ संकल्प कर लेंगी कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे सुखदेवी बनना है, सुखदेवी बनना है, मुझे अपनी वाणी से सबको सुख ही देना है और सुख ही लेना है। ऐसा अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेंगी तो दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़कर होता है। ऐसी मेरे को शुभकामना है, मेरी शुभकामना है आपके प्रति, और ऐसा मेरे अपने जीवन का एक अनुभव है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि गुस्सा आता है तो उस टाइम पे ठीक है, आप यही पॉजिटिव चीज है कि आप समझ लेते हैं इस बात को कि हाँ गुस्सा आ रहा है, तो आप उस पर काम कर रहे हैं, यही वो चीज बताता है कि आप गुस्से को छोड़ना भी चाहते हैं, तो उसी एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना, अपने आप को पॉजिटिव चीज ये बताना कि हाँ मैं शीतल हूँ और मैं सहन कर सकता हूँ, और ये बताना कि शील मेरा स्वभाव है, तो वो चीजें बहुत पॉजिटिवली हेल्प करती हैं। नेचुरली प्रैक्टिस से ही ये चीजें होती हैं, और जैसे आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो हो सकता है आपको एक हफ्ता गुस्सा नहीं आए, फिर थोड़ी एक दिन में थोड़ा सा गुस्सा आए, फिर बाद में फिर 10 दिन तक प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, फिर एक महीना हो जाएगा, तो करते करते ये चीज होती है और ये बिल्ड होता जाता है, तो इस पर घबराने की बात नहीं है, थोड़ा अटेंशन से किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अनीता हमारे साथ हैं, वो फेसबुक से जुड़े हैं, वो कहते हैं दीदी जब हम अपनी तरफ से सब अच्छा करते हैं पर सामने वाले हमारी बात नहीं समझते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये अनीता जी का प्रश्न है, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं पर सामने वाले समझ नहीं रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अनीता जी पूछ रहे हैं।
अनीता बहन, ये बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, आप सामने से तो बहुत अच्छा करती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर कुछ उनके प्रति वैर है, विरोध है, कोई व्यर्थ चिंतन है, कोई उसके प्रति कुछ ऐसे भाव है जो आपके भाव भावनाएं उस तक जरूर पहुंचती है, जो वो आपकी अच्छा करने वाली बात को भी अच्छी रीति से स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप अंतर मन में थोड़ा अपने आप से बात करके देखिए, अपने आप को रियलाइज करके देखिए कि मैं कुछ थोड़ा भी ऐसा कुछ किसी के प्रति सोचती, उस व्यक्ति के प्रति सोचती तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी सोचती हूँ। मुझे एक बात याद आती है, जब मैंने ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जीवन अपनाना शुरू किया, तो कोई उन दिनों में कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं होती थी, तो मैं एकदम ही सेवा के अंदर सेवा के कार्य में चली गई, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जब देखो वो थोड़ा थोड़ा विरोध करता है, तो मुझे लगा कि मैंने तो कभी उसके बारे में कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं हमेशा उसके लिए अच्छा बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ, तो भी वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं करता। तो फिर मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, स्वचिंतन करना शुरू किया और समर्थ चिंतन करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये भूल मेरी तरफ से ही है। क्यों? क्योंकि मेरे मन के अंदर उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा रोष, थोड़े ऐसे वैसे संकल्प सदा ही रहते थे। फिर मैंने जब अपने आप को स्वाध्याय स्वनिरीक्षण करते करते अपने आप को ठीक किया, तो मैंने देखा कि मेरे विचार उन तक पहुंचे और उन्होंने भी मेरी बातों को स्वीकार करना शुरू किया, ऐसा मैंने अनुभव किया। इस पर मुझे महात्मा गांधी जी का बहुत अच्छा एक किस्सा याद आता है। आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को अपने देश को आजाद करने का बहुत बड़ा संकल्प पैदा हो गया था, उनके मन में सदा ही रहता था कि मुझे अपने देश को आजाद करना है, गुलामगिरी से मुक्त करना है, परंतु वो जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे तो उनकी वाणी में इतना ओज नहीं होता था जो लोग उसको अच्छी तरह से रेस्पॉन्स कर सके। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं मेरे अंदर अपने देश को आजाद करने की इतनी उत्कंठा है, परंतु मेरी आवाज लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है, जरूर इसका कुछ कारण होगा। तो उन्होंने बैठ करके एकांत में बैठ करके अपने आप का निरीक्षण किया, स्वाध्याय किया, तो उनको लगा कि मैं भी तो गुलाम हूँ। आप बताइए वो किसके गुलाम थे? वो कस्तूरबा माता के गुलाम थे। वो कस्तूरबा माता के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। तो फिर उनको लगा कि एक गुलाम भारत को कैसे आजाद स्वतंत्र कर सकता है, ये हो नहीं सकता, तो मुझे पहले अपने आप को इस गुलामगिरी से मुक्त करना है। तो फिर उन्होंने काफी इस पर स्वाध्याय स्वचिंतन मनन करते करते अपने आप को सशक्त जब महसूस किया और वो गए कस्तूरबा माता के पास, कस्तूरबा मैं आपसे एक सहयोग लेने के लिए आया हूँ। तो कस्तूरबा माता तो पहले त्याग और तपस्या की देवी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आज से लेकर तेरे को एक पवित्र देवी के रूप में ही देखना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे देश को आजाद करने की बहुत शुभ इच्छा है। तो उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा है वैसे भले करो। तो जब उन्होंने अपने आप को कस्तूरबा माता से आजाद कर लिया, फिर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, तो लोगों ने उनकी बहुत प्यार से आवाज को सुना और माताओं ने अपने जेवर उनके आगे अर्पित कर दिए, कन्याओं नए नए युवा युगलों ने अपने पतियों को उनके आगे निछावर कर दिया, माताओं ने अपने बेटों को उनके आगे निछावर कर दिया, देश के हर कोने से उनको सहयोग देने की आवाजें उठने लगी और बहुतों ने उनको सहयोग दिया, जो सबने मिलकर के इनकलाब जिंदाबाद करते 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 विदेशियों को अहिंसा के बल से भगा दिया। तो मेरी बहन, अगर हम शुद्ध है, शुभ है, हमारा चिंतन श्रेष्ठ है, सशक्त है, तो हमारी आवाज दूसरों के पास अवश्य पहुंचेगी, ऐसी मेरी शुभ भावना है।
आपने बहुत ही गहरी बात कही है दीदी, बातों बातों में ही सही। आपने जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया महात्मा गांधी की जीवनी जिन लोगों ने पढ़ी है, माय एक्सपेरिमेंट सूत्र, जिसमें वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि उन्होंने ये चीज महसूस की कि मैं खुद गुलाम हूँ तो मैं भारत को गुलामी से आजाद नहीं करवा सकता, और उन्होंने देखा कि वो अपने मन के वीकनेसेस के गुलाम है, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, बहुत सारे व्रत आदि किए, अहिंसा का व्रत लिया, सत्याग्रह का व्रत लिया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट खुद अपने साथ की। और शायद ये चीज व्यक्ति के अपने इंटेंशन के बारे में, आपने जो बात अभी कही कि हम दिल के अंदर क्यों कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अगर हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं वो सोचने की जरूरत है। हम कहीं किसी को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कह रहे, या फिर सिर्फ हम उनको बदलने के लिए तो वो चीज नहीं कर रहे, सिर्फ दूसरों के बदलने के उद्देश्य से भी अगर हम चीजें करेंगे तो शायद वो नहीं होंगी, बट आपके अंदर वो प्योर इंटेंशन होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, मैं समझता हूँ ये बहुत गहरी बात है जो आध्यात्मिकता के गहन सिद्धांतों में से है और आपने बड़े सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। माधुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और माधुरी फेसबुक से हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं ओम शांति, इफ सम वर्क गेट्स डिलेड देन हाउ डू वी कंसील आवर माइंड दैट इट इज फॉर आवर बेनिफिट। माधुरी जी का प्रश्न है कि जब कोई चीज समय से ज्यादा टाइम ले रही है, वो देरी हो रही है वो चीज को होने में, तो हम अपने मन को ये कैसे समझाएं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसमें भी कुछ कल्याण है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई टाइम पे चीजें पूरी हो जानी चाहिए, टाइम पे बस आ जानी चाहिए, टाइम पे ट्रेन आ जानी चाहिए, टाइम पे जो हम काम कर रहे हैं वो हो जाना चाहिए, टाइम पे पैसे भी आ जाने चाहिए, अगर इसमें थोड़ी भी लेट होता है तो फिर हमें मन सोचने लगता है कि इसमें क्या भला हो सकता है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि हर चीज में कुछ ना कुछ भला हो रहा है, तो जब चीजें देर होने लगती हैं तो उसमें हम क्या भलाई देखें, कैसे हम अपने मन को समझाएं, माधुरी जी सोचते हैं।
माधुरी बहन, आपका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है और बहुत गहराई में जाने का है। जब आप चाहती है कि टाइम पर सब, पहले यही सवाल आप अपने आप से पूछे कि आपकी दिनचर्या में जो कुछ भी आप करती है समय के अनुसार करती है? कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है आप चाहते हुए भी नहीं कर पाती हो ना, क्योंकि वो परिस्थितियां आपको मजबूर कर देती हैं जो आप समय पर काम करना चाहती हैं, समय पर किसी को कुछ देना चाहती हैं, समय पर किसी से कुछ लेना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि संसार के अंदर विभिन्नता है। संसार के हर प्राणी के अंदर अपने अपने विचार है, अपने अपने संस्कार है, अपने अपने कार्य करने की अपनी अपनी कार्य की क्षमता है, कार्य करने की अपनी कार्य शैली है। तो वो अपने कार्य के समय के समय का वो ध्यान तो रखते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं, इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की बातें आ जाती है जिसके कारण वो समय के अनुकूल नहीं हो पाता। तो इसमें हमें डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा फ्यूज उड़ जाता है, हमारे में निराशा आ जाती है, हमारे में उदासी आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए इसमें भी कुछ कल्याण है ना? तो जब आप ये सोचने लगेंगे कि इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ कल्याण है जो आज दिखाई नहीं देता है, कल जरूर इसके आगे चल करके उसका दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा कि हम जो अपने अंदर एक निराशा युक्त या उदासी के संकल्प पैदा करके रोष पैदा कर लेती हो, जिसे अपना कीमती समय, कीमती संकल्प, कीमती श्वास जो आपकी असली संपदा है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए हमारी अपनी असली संपदा हमारे संकल्प है, हमारे श्वास है और हमारा समय है। उसको हम दुरुपयोग करते हैं अगर हम ये सोच के कि कोई काम टाइम पर क्यों नहीं होता। अगर हम ये सोच ले कि जो कुछ हो रहा है उसमें भी भला है, वो भी अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा, तो मुझे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या को एक अच्छे समय के अनुकूल चलाने के लिए अपना संकल्प, अपना श्वास और समय का सदुपयोग करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको अच्छे कामों में लगाना है, ना कि व्यर्थ चिंतन में लगा करके अपने आप को दुखी करना है।
ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं तो व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है, बहुत ही वेस्ट थॉट्स चलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब तक क्यों नहीं हुआ, बार बार घड़ी की तरफ देखना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करने लगते हैं। और आपने ये चीज कहा कि शायद उसका बेनिफिट मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, बट शायद थोड़ी देर में नजर आए, क्योंकि हम तुरंत तुरंत देखने के आदि हो गए। और आजकल तो ऐसा है, ये हाई स्पीड इंटरनेट का जमाना है, ट्रेनें भी फास्ट चलनी चाहिए, फ्लाइट भी फास्ट होना चाहिए, फूड भी हमारा फास्ट फूड हो गया है, तो सब कुछ तुरंत करने की आदत के कारण बहुत सारी चीजें हमारी ऐसा हम एक्सपेक्ट करने लगे हैं। बट ऐसा करना शायद लाइफ का सिस्टम नहीं है। लाइफ हमेशा जब आप प्रकृति में देखते हैं तो चीजें स्लोली स्लोली होती हैं, उसका एक अपना पेस होता है। और जैसे दीदी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि संसार में विविधता है, बहुत सारी वैरायटी है, और अक्सर अंग्रेजी में कहा जाता है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये वैरायटी है, इसलिए हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, चीजें एंजॉय कर पाते हैं, भोजन एंजॉय कर पाते हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। अगर देरी होती भी है तो उस चीज को भी अप्रिशिएट करना, समझना चाहिए कि इसमें कुछ अच्छा होगा, शायद मुझे आज नजर नहीं आ रहा है बट हो सकता है इसमें कुछ अच्छा हो। बहुत ही अच्छी बात है दीदी। मैं समझता हूँ हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि हम और ज्यादा प्रश्न ले सके दोस्तों, और मैं हर दिन की तरह आज भी माफी मांगना चाहता हूँ कि सारे सवालों को मैं नहीं ले पाऊंगा, बट एक आखिरी प्रश्न मैं जरूर ले लेता हूँ। सिद्धप्पा जी हमारे साथ हैं, और सिद्धप्पा नरगती नाम है इनका, और सिद्धप्पा हमारे साथ YouTube से जुड़े हैं। वो ये पूछते हैं कि आज के समय में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये पूछते हैं। मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत ज्यादा बाहर के लोगों के लिए भी सेवाएं करती हैं, समाज के लोगों के लिए बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिटेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीखने के लिए राजयोग सेवा केंद्र पर भी आते हैं। और ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में भी एक ब्रेक सा है कि बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी क्या सेवा कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग जैसे दीदियां सेंटर्स पे रहते हैं, सेवा केंद्रों पर सेवाएं देखते हैं, तो आप लोगों की सेवाएं कैसे चल रही हैं, इसके बारे में सिद्धप्पा जी पूछते हैं, इनके बारे में बताएंगे।
सिद्धप्पा भाई जी, बात ये है कि सेवाएं तो पहले और तरह की थी और अभी भी हम बहुत सेवाओं में बिजी हैं। सबसे पहली सेवा तो हम अपने व्यक्तिगत अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और महान बनाने की और एक तपस्वी जीवन जो हमारा लक्ष्य है उस जीवन को बनाने में भी व्यस्त रहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन पर हमारी इतनी सेवाएं बढ़ गई है, हम ऑनलाइन पर क्लासेस भी कराते हैं, ऑनलाइन पर योग शिविर भी कराते हैं, ऑनलाइन पर हम कोई ना कोई एक विशेष टॉपिक लेकर के उस पर भाषण भी करते हैं, ऑनलाइन पर हम कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं। हमारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जो पहले दूसरे रूप में हुआ करती थी अब ऑनलाइन पर ही होती है, जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े लोग, जैसी जैसी कॉन्फ्रेंस, जैसे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर्स साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस है, इसी प्रकार सोशल वालों की कॉन्फ्रेंस है या महिलाओं की कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें जिस भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन पर, और हम उस ऑनलाइन पर भी एक विशेष टॉपिक रख करके अपने भाषण भी करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं, जिससे लोग काफी घर बैठे एंजॉय करते हैं, क्योंकि लोगों के पास भी आज बहुत टाइम है और लोग घर बैठे भी हमारी सेवाओं से बहुत लाभ ले रहे हैं और बहुत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भले आज लॉकडाउन के कारण हम व्यक्तिगत एक दूसरे से नहीं मिल रहे, परंतु ऑनलाइन पर हम बहुत एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को ज्ञान, योग, धारणा और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला प्रदान कर रहे हैं। बहुत लोग हमसे बहुत खुश है और बहुत लोग चाहते हैं कि ये हमें मिलता ही रहे, ये उनको ऐसा लगता है, कई लोग तो ऐसा महसूस करने लग गए हैं कि ये हमारा आत्मा का भोजन है, जो भोजन हमें मिलता रहना चाहिए। तो अभी हमने अपने हरिनगर में ही एक शाम के टाइम 7:30 से 8:30 रोज का कोई ना कोई विशेष टॉपिक रख करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके लिंक जोड़ करके उनकी क्लासेस कराते हैं। तो हमारा जीवन तो सार्थक ही है और हम सेवा में सदा तत्पर रहते हैं।
जी दीदी, आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आज जवाब तो दिए हैं, बट आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपने इतने सरलता से चीजों को ब्रीफ किया, और मैं समझता हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही काबिले तारीफ चीज है कि जैसे चीजें बदली वैसे सारी सेवाओं को ऑनलाइन करना और अपने आप को भी ये नई चीजें सिखाना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही काबिले तारीफ चीज है, और सेवाएं अलग तरीके से बढ़ चुकी हैं, आपने वो चीज बताया, और मैं सोचता हूँ, मैं इस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मैं नहीं सोचता कि कोई आपके जैसे एक एज में, क्योंकि आप तो मेडिटेटर हैं, आपके लिए एज एक नंबर मात्र है, आप फिजिकल बॉडी की सीमाओं से आगे अपने आप को ले जाते हैं, बट इस उम्र में भी इन सारी चीजों को क्रिएटिवली सोचना, और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं नहीं सोचता कि कोई 84 वर्ष की उम्र में ऑनलाइन जुड़ के कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकता है, और ये शायद आपके मेडिटेशन का असर ही है जो यहाँ देखने को मिलता है। हमारे इतने सारे दोस्त आज हमारे साथ जुड़े जिन्होंने सवाल पूछे, उन सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं शुक्ला दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे साथ जुड़े और आज के सेशन में इतनी सारी अच्छी बातें निकल के आई, स्पिरिचुअलिटी को इतने सिंपल तरीके से समझा हमने जो हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आप सभी दोस्तों की तरफ से शुक्ला दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े।
मैं भी आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया।
थैंक यू दीदी। कल के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल होंगे जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और कल के बी द चेंज सीरीज में वो हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स रहेंगे, तो कल के प्रोग्राम में भी आप सभी दोस्तों का स्वागत है, और आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आपको लगता है उनको ऐसी किसी पॉजिटिव चीज की जरूरत है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने टाइमलाइन पे, और कल आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं कि वो आकर प्रोग्राम के टाइम पे सवाल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का आज हमारे साथ ज्वाइनिंग करने के लिए, और हर दिन की तरह जैसे हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन होते हैं, तो वो हम, क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, तो उनके सानिध्य में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं शुक्ला दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि आने वाले 3-4 मिनट के लिए दीदी जी हमें योग कराएं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को कराएं, तो दीदी जी आप मेडिटेशन करें।
ओम शांति। आप सभी थोड़ा सीधे हो जाइए, स्टेट में जाइए और थोड़े क्षणों के लिए आप स्थूल वातावरण से, स्थूल देह से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करिए और अपने अंदर उन सत्य समृद्धियों को जागृत कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं एक चैतन्य सत्ता, मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप वाली आत्मा, मुझ आत्मा का निवास स्थान शरीर के अंदर ब्रह्मकुटी के अंदर है। ये ब्रह्मकुटी मेरा असली निवास स्थान है। इस ब्रह्मकुटी के मध्य में रहकर मैं इस सारे शरीर का संचालन करती हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी सत्ता हूँ। मैं आत्मा चैतन्य हूँ। ये शरीर मेरी एक मोटर है, मैं उसकी ड्राइवर हूँ। मैं उस परम शक्ति परमात्मा जो सर्व गुणों सर्व शक्तियों की दाता है, उनकी संतान हूँ। मेरा निज धाम सूरज चांद तारागण से भी परे अखंड ज्योति में तत्व है, जिसको निर्वाण धाम परम धाम कहते हैं। मैं वहां की रहने वाली हूँ, मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध हूँ, सशक्त हूँ, शांत स्वरूप। मैं उस कल्याणकारी पिता के संतान हूँ, जिनको हम प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। उस पिता ने मुझे श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। ओ शांति शांति शांति।